काउंट फोल्के बर्नाडोट की हत्या। फोल्के बर्नाडोट एक स्वीडिश राजनयिक, कुलीन और मानवतावादी थे जिनका जीवन 20वीं सदी के मध्य के कुछ सबसे उथल पुथल भरे घटनाओं से गहराई से जुड़ा हुआ था। 1895 में स्वीडिश शाही परिवार में जन्मे बर्नाडोट ने द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम महीनों में 30,000 से अधिक कैदियों, जिनमें से कई नाजी एकाग्रता शिविरों से थे, की रिहाई के लिए बातचीत करके अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त की, जो उनके नेतृत्व में व्हाइट पैसेज बचाव मिशन के माध्यम से हुई। एक तटस्थ, दयालु और व्यावहारिक वार्ताकार के रूप में उनकी प्रतिष्ठा ने उन्हें यूरोप के सबसे सम्मानित मानवतावादी व्यक्तियों में से एक बना दिया। 1948 में जब नवगठित संयुक्त राष्ट्र को मध्य पूर्व में अपनी पहली बड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ा, तो बर्नाडोट को संगठन का पहला आधिकारिक मध्यस्थ नियुक्त किया गया। अरब इसराइली संघर्ष, जो संयुक्त राष्ट्र की विभाजन योजना और इसराइल राज्य की घोषणा के बाद भड़क उठा, जल्दी ही यहूदी और अरब बलों के बीच पूर्ण युद्ध में बदल गया। संयुक्त राष्ट्र एक ऐसे मध्यस्थ की तलाश कर रहा था दोनों पक्षों के बीच निष्पक्ष रूप से कार्य कर सके, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान का आनंद ले और अत्यधिक अस्थिर स्थिति में नेविगेट करने के लिए आवश्यक राजनयिक कौशल रखता हो। बर्नाडोट का सिद्ध बातचीत का रिकॉर्ड, स्वीडिश के रूप में उनकी तटस्थता और युद्ध के दौरान उनका मानवतावादी अनुभव उन्हें इस नाजुक और अब तक अनोखी मिशन के लिए आदर्श उम्मीदवार बना दिया। मानवतावादी और राजनयिक उपलब्धियां। अरब इसराइली संघर्ष में शामिल होने से पहले काउंट फोल्के बर्नाडोट पहले से ही एक मानवतावादी और राजनयिक के रूप में स्थायी प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके थे। उनकी सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम महीनों में हुई, जब उन्होंने नाजी एकाग्रता शिविरों से दसियों हजार लोगों को बचाने वाली एक साहसिक बचाव मिशन का नेतृत्व किया। स्वीडिश रेडक्रॉस के उपाध्यक्ष के रूप में बर्नाडोट ने अपने राजनयिक संबंधों, शांत स्वभाव और नैतिक साहस का उपयोग करके तीसरे रैंक के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक, हाइनरिक हिमलर सहित उच्च पदस्थ नाजी अधिकारियों के साथ सीधे बातचीत की। दृढ़ता, कुशलता और रणनीतिक तटस्थता के संयोजन से बर्नाडोट ने 1945 की शुरुआत में जर्मन शिविरों से लगभग 30,000 कैदियों की रिहाई और निकासी सुनिश्चित की। मुक्त किए गए लोगों में स्कैंडिनेवियाई, फ्रांसीसी, पोलिश और एक महत्वपूर्ण संख्या में यहूदी कैदी शामिल थे जो नाजी शासन के पतन के साथ आसन्न मौत का सामना कर रहे थे। उनके प्रयासों का चरम बिंदु व्हाइट बसेज नामक एक साहसिक बचाव अभियान की स्थापना में हुआ। व्हाइट बसेज परियोजना एक लॉजिस्टिक और मानवतावादी नवाचार था। बर्नाडोट ने बसों, ट्रकों और एम्बुलेंस की एक काफिले का आयोजन किया, पूरी तरह से सफेद रंगे और बड़े लाल क्रॉस से चिन्हित, ताकि युद्ध के अराजकता के बीच तटस्थ वाहनों के रूप में पहचाने जा सके। ये वाहन जर्मनी और कब्जे वाले यूरोप के खतरनाक युद्ध क्षेत्रों से गुजरे, रिवेन्सब्रुक, डाचाओ और नोइंगा में जैसे एकाग्रता शिविरों से कैदियों को एकत्रित किया और उन्हें तटस्थ स्वीडन में सुरक्षा में पहुंचाया। बसों का सफेद रंग जानबूझकर चुना गया था ताकि उन्हें सैन्य परिवहन से अलग किया जा सके, उनके मानवतावादी उद्देश्य को संकेत दिया जा सके, एक विचार जो बाद में संघर्ष क्षेत्रों में मानवतावादी और चिकित्सा वाहनों को चिन्हित करने की आधुनिक प्रथा को प्रभावित करेगा ताकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। बर्नाडोट का मिशन खतरे से खाली नहीं था। काफिले संबद्ध बमवर्षकों से हमलों की निरंतर धमकी के साथ साथ स्थानीय नाजी कमांडरों से बाधाओं के तहत काम कर रहे थे। इन चुनौतियों के बावजूद अभियान अपेक्षा से अधिक सफल रहा, हजारों जानें बचाईं और दिखाया कि कैसे सबसे क्रूर शासनों के साथ भी राजनयिक बातचीत मोट मानवतावादी परिणाम दे सकती है। अपने नेतृत्व और साहस के लिए बर्नाडोट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नैतिक अखंडता और व्यावहारिक करुणा के प्रतीक के रूप में सराहा गया। स्वीडिश रेडक्रॉस के साथ उनका काम तटस्थता और मानवतावादी सेवा के उच्चतम आदर्शों का प्रतीक था, सिद्धांत जो बाद में संयुक्त राष्ट्र के पहले मध्यस्थ के रूप में उनकी नियुक्ति का मार्गदर्शन करेंगे। व्हाइट बसेज अभियान ने न केवल जाने बचाई बल्कि युद्धोत्तर मानवतावादी कानून और आधुनिक शांति संरक्षण प्रथाओं की नींव रखने में भी मदद की, जिससे बर्नाडोट मानवतावादी राजनयिक की एक अग्रणी बन गए। संयुक्त राष्ट्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्ति और 1948 मिशन। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपने असाधारण मानवतावादी कार्य के बाद काउंट फोल्के बर्नाडोट अंतर्राष्ट्रीय विश्वास और नैतिक अधिकार की एक व्यक्ति बन चुके थे। तटस्थता, राजनय और करुणा का उनका रिकॉर्ड संयुक्त राष्ट्र को उन्हें अपना पहला आधिकारिक मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए प्रेरित किया, अंतर्राष्ट्रीय राजनय में एक नया और अब तक अनोखा भूमिका। मई 1948 में संयुक्त राष्ट्र को अपनी सबसे दबाव वाली संकट का सामना करना पड़ा, ब्रिटिश जनादेश का अंत और इसराइल राज्य की घोषणा के बाद फिलिस्तीन में पूर्ण युद्ध का प्रकोप। 1947 का संयुक्त राष्ट्र विभाजन योजना, सामान्य सभा संकल्प 181 ने ब्रिटिश जनादेश फिलिस्तीन को दो स्वतंत्र राज्यों में विभाजित करने का प्रस्ताव रखा, एक यहूदी और एक अरब, यरूशलेम को अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन के तहत। जबकि यहूदी नेताओं ने योजना को राजनयिक जीत और राज्य निर्माण के लिए कानूनी आधार के रूप में स्वीकार किया, फिलिस्तीनी अरब और पड़ोसी अरब राज्य ने इसे गहराई से अन्यायपूर्ण मानकर अस्वीकार कर दिया। उस समय फिलिस्तीनी अरब आबादी का लगभग दो तिहाई हिस्सा थे, जबकि यहूदी केवल एक तिहाई थे। फिर भी योजना ने फिलिस्तीन के कुल क्षेत्रफल का 55% प्रस्तावित यहूदी राज्य को आवंटित किया, भले ही यहूदी आबादी कानूनी शीर्षक से 7% से कम भूमि की मालिक थी। बाकी ज्यादातर अरबों के स्वामित्व वाली क्षेत्र और कृषि भूमि खंडित और आर्थिक रूप से कमजोर अरब राज्य की आधार बनाने वाली थी। फिलिस्तीनियों और व्यापक अरब दुनिया के लिए यह विभाजन निष्पक्ष समझौता नहीं, बल्कि उपनिवेश वापसी की छाया और हॉलोकॉस्ट के बाद अंतर्राष्ट्रीय अपराधबोध के तहत डिजाइन की गई एक प्रकार की संपत्ति हड़पने वाली थी। अरब और फिलिस्तीनी नेतृत्व के लिए संयुक्त राष्ट्र का निर्णय आत्मनिर्णय के सिद्धांत और जनसांख्यिकीय तथा क्षेत्रीय स्वामित्व की जीवित वास्तविकता दोनों का उल्लंघन करता था। इसे एक विदेशी राजनीतिक इकाई की थोपना माना गया, जिसकी बहुसंख्यक आबादी ने न तो सहमति दी थी और न ही उसकी रचना में परामर्श किया गया था। योजना ने प्रभावी रूप से ऐतिहासिक फिलिस्तीन की एकता को विकृत कर दिया और अरबों द्वारा इसे अधिकारों से वंचित करने की लंबी प्रक्रिया के चरम के रूप में देखा गया, जो ब्रिटिश जनादेश के तहत शुरू हुई और सायोनी आंदोलन द्वारा प्रायोजित यहूदी आप्रवासन की लहरों से तेज हुई। इस प्रकार जब इसराइल राज्य ने 14 मई 1948 को अपनी स्वतंत्रता घोषित की और अरब सेनाओं ने अगले दिन हस्तक्षेप किया, तो युद्ध को अरब दुनिया में आक्रामकता का कार्य नहीं, बल्कि थोपी गई विभाजन का विरोध करने और फिलिस्तीन की क्षेत्रीय और राजनीतिक अखंडता की रक्षा करने का प्रयास माना गया। इसी माहौल में युद्ध, विस्थापन और कड़वे ऐतिहासिक शिकायतों के काउंट फोल्के बर्नाडोट को संयुक्त राष्ट्र के पहले मध्यस्थ के रूप में भेजा गया। अपनी प्रतिष्ठा और ईमानदारी के बावजूद बर्नाडोट जल्दी ही संघर्ष को चलाने वाली वैचारिक और धार्मिक मान्यताओं की पूरी ताकत का सामना कर बैठे। ज़ायोनी आंदोलन के भीतर कई नेताओं, जिसमें मुख्यधारा के राष्ट्रवादियों और लेही स्टर्न गैंग जैसे चरमपंथी गुटों शामिल थे, का मानना था कि पूरी भूमि इरिट्स इसराइल, जैसा कि हिब्रू बाइबल में वर्णित है, यहूदियों का शाश्वत और दिव्य रूप से निर्धारित घर है। उनके लिए यह दिव्य आदेश किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून, राजनीतिक समझौते या राजनयिक बातचीत से ऊपर था। विभाजन की अवधारणा, किसी भी हिस्से पर अरब राज्य को मान्यता देना जो वे पवित्र क्षेत्र मानते थे, उनके नजरिए में न केवल राजनीतिक रियायत बल्कि आध्यात्मिक विश्वासघात था। दिव्य संप्रभुता में यह अटल विश्वास बर्नाडोट के मिशन को कई ज़ायोनी नेताओं, विशेष रूप से उग्रवादी भूमिगत के वैचारिक आधार से सीधे टकराव में डाल दिया। फिर भी उन्होंने न्याय और व्यावहारिकता के बीच साझा आधार खोजने के लिए दृढ़ रहते हुए जारी रखा। उनके अथक प्रयासों ने युद्ध में पहली युद्धविराम की ओर ले जाया, जो 11 जून 1948 को घोषित की गई, जिसने अस्थायी रूप से लड़ाई रोक दी और दोनों पक्षों के नागरिकों तक मानवतावादी सहायता पहुंचने दी। इस युद्धविराम के दौरान बर्नाडोट ने न्याय और मानवतावादी चिंता के सिद्धांतों से निर्देशित अपनी पहली शांति प्रस्ताव विकसित की। उन्होंने सुझाव दिया कि यरूशलेम को अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण में रखा जाए, इसके सार्वभौमिक धार्मिक महत्व के कारण फिलिस्तीनी शरणार्थियों को अपने घर लौटने की अनुमति दी जाए या मुआवजा दिया जाए और क्षेत्रीय समायोजन किए जाएं, गैलीली को इसराइल और नेगेब रेगिस्तान को अरबों को आवंटित करके अधिक न्यायपूर्ण भूमि वितरण बनाने के लिए। हालांकि योजना मध्य मार्गिता और समझौते के लिए ईमानदार प्रयास को दर्शाती थी, इसे तुरंत दोनों पक्षों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। अरब सरकारों ने इसे इसराइल के अस्तित्व की निहित मान्यता के लिए खारिज कर दिया, जबकि कई ज़ायोनी गुटों, विशेष रूप से दक्षिणपंथी चरमपंथी भूमिगत, ने इसे पूरे इसराइल पर यहूदी दावे के विश्वासघात के रूप में निंदा की। कट्टरपंथी हलकों में बर्नाडोट को शांति निर्माता के रूप में नहीं, बल्कि दिव्य भाग्य में बाधा के रूप में देखा गया, एक विदेशी अधिकारी जो बाइबल की भविष्यवाणी की पूर्ति में हस्तक्षेप करने की हिम्मत करता था। फिर भी बर्नाडोट का मानना रहा कि यदि तर्क और मानवता विचारधारा और बदले की भावना पर हावी हो जाए तो शांति संभव है। उन्होंने राजनय में विश्वास बनाए रखा, भले ही चरमपंथी समूह उनकी उपस्थिति को असहनीय मानने लगे। दुखद रूप से शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें जल्द ही उन लोगों के साथ घातक टकराव में डाल दिया जो मानते थे कि उनकी मिशन ईश्वर द्वारा पवित्र है और इसलिए बातचीत से परे है। फोल्के बर्नाडोट की हत्या। सितंबर 1948 तक काउंट फोल्के बर्नाडोट की फिलिस्तीन में मिशन उन्हें 20वीं सदी के सबसे अस्थिर संघर्षों के केंद्र में रख चुकी थी। संयुक्त राष्ट्र मध्यस्थ के रूप में उनकी भूमिका तटस्थता की मांग करती थी, लेकिन तटस्थता खुद एक युद्ध में असहनीय हो गई थी जो अस्तित्व की भय और पवित्र विश्वास से प्रेरित थी। विरोधी पक्ष उनके शांति प्रस्तावों को सुलह के इशारे के रूप में नहीं, बल्कि उनकी वैधता और दिव्य उद्देश्य के लिए खतरे के रूप में देखते थे। अरब राज्यों के लिए बर्नाडोट की मध्यस्थता इसराइल राज्य को निहित रूप से मान्यता देती थी, जिसे वे अरब और फिलिस्तीनी अधिकारों का अस्वीकार्य उल्लंघन मानते थे। ज़ायोनी आंदोलन के लिए, विशेष रूप से इसके उग्रवादी गुटों, उनके प्रस्तावों को उन भूमियों से वंचित करने का प्रयास माना गया जिन्हें वे यहूदियों को ईश्वरीय वादा मानते थे। विचार की एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय या एक विदेशी राजनय एरेट्स इसराइल की सीमाओं को राजनीतिक सुविधा के अनुसार फिर से खींच सकता है, उनके लिए एक प्रकार की विधर्म था। इन समूहों में सबसे चरमपंथी लेही था, जिसे स्टर्न गैंग के नाम से भी जाना जाता है, एक ज़ायोनी भूमिगत संगठन जो लंबे समय से ब्रिटिश और अरब बलों को इसराइल भूमि से निकालने के लिए सशस्त्र संघर्ष की वकालत करता रहा था। लेही के सदस्यों का मानना था कि वे बाइबल इसराइल को फिर से हासिल करने की पवित्र ड्यूटी निभा रहे हैं और किसी भी समझौते को अस्वीकार करते थे जो अरब संप्रभुता को पवित्र मिट्टी पर मान्यता देता। उनके लिए बर्नाडोट की शांति योजना, जो यरूशलेम पर अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण, फिलिस्तीनी शरणार्थियों की वापसी और अरबों को क्षेत्रीय रियायतों की मांग करती थी, राजनयिक प्रयास नहीं बल्कि ईश्वर की वादे और यहूदी राष्ट्र के भाग्य के खिलाफ विश्वासघात का कार्य था। 17 सितंबर 1948 को बर्नाडोट का जीवन हिंसक रूप से समाप्त हो गया। वे यरूशलेम के कटामोन जिले में एक संयुक्त राष्ट्र चिन्हित काफिल में यात्रा कर रहे थे फ्रांसीसी संयुक्त राष्ट्र अधिकारी कर्नल ऑन्ड्रे सिरोट के साथ, जब लेही उग्रवादियों द्वारा घात लगाकर हमला किया गया जो इसराइली सैनिकों के रूप में प्रचंड थे। जब वाहन एक सड़क अवरोध पर रुके तो हमलावरों में से एक, बाद में यहोशुआ कोहेन के रूप में पहचाना गया, बर्नाडोट की कार के पास आया और निकट दूरी से कई गोलियां चलाईं, जिससे बर्नाडोट और सिरोट तुरंत मारे गए। हत्या ने दुनिया को स्तब्ध कर दिया। बर्नाडोट निहत्थे थे, अंतर्राष्ट्रीय कानून की सुरक्षा के तहत यात्रा कर रहे थे और पूरी तरह से मानवतावादी और राजनयिक मिशन में लगे हुए थे। उनकी हत्या न केवल एक व्यक्ति पर हमला थी बल्कि संयुक्त राष्ट्र की सत्ता और अंतर्राष्ट्रीय शांति संरक्षण के नाजुक आदर्श पर अतिक्रमण थी। तत्काल बाद में इसराइली अनंतिम सरकार डेविड बेन गुरियन के नेतृत्व में ने हत्या की सार्वजनिक रूप से निंदा की और लेही और इर्गुन, दूसरी बड़ी भूमिगत मिलिशिया को प्रतिबंधित कर दिया। हालांकि प्रतिक्रिया पूर्ण जवाबदेही से कम रही। हालांकि लेही के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, किसी को भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया। कुछ वर्षों में संगठन को क्षमादान दिया गया और इसके कुछ पूर्व सदस्यों ने इजरायली सरकार में पद संभाले। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बर्नाडोट की हत्या ने क्षोभ और शोक पैदा किया, विशेष रूप से स्वीडन और संयुक्त राष्ट्र में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उन्हें औपचारिक रूप से सम्मानित किया और उनकी मौत ने संघर्ष क्षेत्रों में अधिक संरचित शांति संरक्षण और संयुक्त राष्ट्र कर्मियों की सुरक्षा के प्रयासों को प्रेरित किया। फिर भी राजनीतिक रूप से उनकी मिशन अधूरी रह गई। उनके डिप्टी डॉक्टर राल्फ बंच ने बाद में उनका कार्य फिर से शुरू किया और सफलतापूर्वक 1949 युद्ध विराम समझौतों की बातचीत की, जिसके लिए बंच को नोबेल शांति पुरस्कार मिला। कई इतिहासकारों के लिए बर्नाडोट की हत्या पवित्र राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीय राजनय के बीच टकराव का प्रतीक थी, दिव्य अधिकार में निहित विश्व दृष्टि और समझौते तथा मानवतावादी कानून पर आधारित दूसरी के बीच। उनकी मौत ने उग्रवादी विचारधारा के सामने नैतिक अनुनय की सीमाओं और असंगत पूर्णताओं के बीच मध्यस्थता करने वालों के खतरे को उजागर किया। काउंट फोल्के बर्नाडोट की विरासत उनकी हत्या की त्रासदी में ही नहीं बल्कि उन आदर्शों में जीवित है जिनके लिए वे खड़े हुए, कट्टरता पर तर्क, हिंसा पर कानून और विश्वास की दुनिया के सबसे विभाजित स्थानों में भी शांति एक नैतिक अनिवार्यता है जिसके लिए मरना उचित है। परिणाम और विरासत। 17 सितंबर 1948 को काउंट फोल्के बर्नाडोट की हत्या ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में झटके की लहरें भेजीं। यह पहली बार था जब नवगठित संयुक्त राष्ट्र के एक प्रतिनिधि को शांति मिशन निष्पादित करते हुए जानबूझकर मारा गया। कई लोगों के लिए हत्या विश्व युद्ध और नरसंहार से अभी भी डगमगाते युग में अंतर्राष्ट्रीय कानून की नाजुकता का प्रतीक थी। इसने उभरते इसराइली राज्य, संप्रभुता के राष्ट्रवादी और धार्मिक दृष्टिकोण में निहित और शांति, बातचीत और जवाबदेही के वैश्विक आदर्शों के बीच तनावों को भी उजागर किया जिनका बर्नाडोट प्रतीक थे। स्वीडन में बर्नाडोट की मौत गहरे शोक और क्रोध के साथ मिली। वे राष्ट्रीय नायक थे, युद्धकालीन मानवतावादी प्रयासों के लिए प्रशंसित और वैश्विक मामलों में नैतिक आवास के रूप में देखे जाते थे। स्वीडिश समाचार पत्रों ने हत्या को एक जघन्यता के रूप में निंदा की और न्याय की मांग की। स्वीडिश सरकार ने इसराइल और संयुक्त राष्ट्र को औपचारिक विरोध दर्ज किए, लेकिन राजनयिक सावधानी ने जल्द ही क्षोभ को शांत कर दिया। इसराइल राज्य के प्रारंभिक वर्षों में कुछ राष्ट्र युवा देश के साथ संबंधों को जोखिम में डालना चाहते थे और स्वीडन अपने क्रोध के बावजूद अंततः मामले को आगे की टकराव के बिना इतिहास में फीका पड़ने दिया। संयुक्त राष्ट्र ने बर्नाडोट की हत्या का जवाब शांति संरक्षण और संघर्ष क्षेत्रों में अपने प्रतिनिधियों की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करके दिया। उनके डिप्टी डॉक्टर राल्फ पंच, एक अमेरिकी राजनयिक और विद्वान, को बर्नाडोट के मिशन को जारी रखने के लिए नियुक्त किया गया। मंच की धैर्यपूर्ण बातचीत ने 1949 युद्ध विराम समझौतों को जन्म दिया, जिसने इसराइल और उसके अरब पड़ोसियों के बीच युद्ध विराम लाइनें स्थापित की। इस उपलब्धि के लिए मंच को नोबेल शांति पुरस्कार मिला, ऐसा करने वाला पहला अफ्रीकी अमेरिकी। फिर भी यह व्यापक रूप से स्वीकार किया गया कि उनकी सफलता बर्नाडोट के कार्य और बलिदान द्वारा रखी गई नींव पर टिकी थी। इसराइल के भीतर प्रतिक्रिया अधिक अस्पष्ट थी। अनंतिम सरकार ने हत्या की सार्वजनिक रूप से निंदा की और जिम्मेदार चर्मपंथी समूहों को प्रतिबंधित किया, लेकिन न्याय की उसकी खोज सीमित थी। हालांकि लेही के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, किसी को भी बर्नाडोट की हत्या के लिए मुकदमा नहीं चलाया गया। कुछ वर्षों बाद सामान्य क्षमादान के तहत लेही के पूर्व सदस्यों को कानूनी परिणामों से मुक्त कर दिया गया और कुछ ने इजरायली सार्वजनिक जीवन में पद संभाले, विशेष रूप से यित्साक शमीर, जो बाद में इसराइल के प्रधानमंत्री बने। शायद सबसे कड़वी विडंबना यह है कि यहोशुआ कोहेन, लेही उग्रवादी जिसे बर्नाडोट और कर्नल ऑन्ड्रे सेरोट पर घातक गोलियां चलाने वाले के रूप में पहचाना गया, इसराइल के संस्थापक प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन के निकट मित्र और व्यक्तिगत अंगरक्षक बन गए। कोहेन बाद में नीगेव के बुत्स दे बुकेव में बस गए, जहां बेन गुरियन सेवानिवृत्त हुए। दोनों वर्षों तक एक दूसरे के बगल में रहे, रोज टहलते और बातचीत करते। संयुक्त राष्ट्र के पहले शांति मध्यस्थ के हत्यारे का अंततः उस व्यक्ति की रक्षा करना जो राज्य बनाया जिसने हत्या की निंदा की थी, इसराइल के प्रारंभिक वर्षों की नैतिक पाखंड को उजागर करता है। बर्नाडोट की हत्या की नैतिक और राजनीतिक निहितार्थ गूंजते रहते हैं। उनकी मौत ने दिखाया कि कैसे धार्मिक राष्ट्रवाद, जब राजनीतिक शक्ति के साथ मिल जाता है, समझौते को असंभव बना सकता है और मध्यस्थों को दुश्मन बना सकता है। बर्नाडोट के लिए राजनय मानवतावाद का विस्तार था, यह विश्वास की संवाद और सहानुभूति घृणा और भय पर विजय प्राप्त कर सकती है। उनके हथियारों और उन्हें प्रेरित करने वाली विचारधारा के लिए भूमि खुद पवित्र थी और बातचीत दिव्य अधिकार को सौंपने के बराबर थी। सार्वभौमिक नैतिकता और पवित्र राष्ट्रवाद के बीच यह टकराव मध्य पूर्व में बाद के संघर्षों में गूंजेगा और शांति निर्माण की स्थायी चुनौतियों में से एक बना हुआ है। उनकी मौत की त्रासदी के बावजूद बर्नाडोट की विरासत उन संस्थानों और आदर्शों में जीवित है जिन्हें उन्होंने आकार देने में मदद की। उनके मानवतावादी नवाचार जैसे वाइट बसेज और राहत अभियानों में तटस्थता पर उनकी जोर ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सुरक्षा के लिए मानवतावादी वाहनों और कर्मियों को चिन्हित करने की आधुनिक प्रथा का मार्ग प्रशस्त किया। संयुक्त राष्ट्र मध्यस्थ के रूप में उनकी सेवा ने भविष्य की संयुक्त राष्ट्र शांति संरक्षण मिशनों की नींव रखी, तटस्थता, मानवतावादी पहुंच और सक्रिय युद्ध क्षेत्रों में राजनय के उपयोग के लिए मिसालें स्थापित की। काउंट फोल्के बर्नाडोट को आज राजनीतिक चर्मपंथ के शिकार के रूप में ही नहीं बल्कि नैतिक साहस और अंतर्राष्ट्रीय विवेक के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। उनके जीवन ने मानवतावादी सहायता वैश्विक राजनय की दुनिया को जोड़ा और उनकी मौत ने हिंसा और शांति के बीच खड़े होने वालों के जोखिमों को रेखांकित किया। हालांकि उनकी फिलिस्तीन में मिशन अधूरी रह गई, जिन सिद्धांतों पर वे जीवित रहे, करुणा, तटस्थता और मानव जीवन के मूल्य में अटल विश्वास, हमारे समय के किसी भी शांति प्रयास के लिए आवश्यक बने हुए हैं। निष्कर्ष 1948 में काउंट फोल्के बर्नाडोट की हत्या न केवल एक व्यक्ति का मौन थी बल्कि शांति और नैतिक राजनय के आदर्शों पर प्रतीकात्मक प्रहार था जिनका वे प्रतिनिधित्व करते थे। उनकी मौत संयुक्त राष्ट्र की युद्धोत्तर दुनिया में मध्यस्थता के प्रयासों में से एक पहली और सबसे दर्दनाक असफलताओं को चिन्हित करती है जो अभी भी न्याय और मानवता बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही थी। स्वीडन के लिए हानि गहराई से व्यक्तिगत थी। बर्नाडोट राष्ट्रीय नायक थे, कुलीन जन्म का व्यक्ति जिसने अपनी स्थिति और प्रभाव का उपयोग दूसरों की सेवा में किया। इसराइल का उनके हथियारों को न्याय के कटघरे में लाने से इनकार स्वीडिश इसराइली संबंधों में एक खाप छोड़ गया जो कभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। आज तक ये संबंध ठंडे बने हुए हैं और स्वीडिश शाही परिवार ने कभी इसराइल की आधिकारिक यात्रा नहीं की, उस अपराध की स्थायी छाया का एक मौन साक्ष्य। फिर भी बर्नाडोट की स्मृति स्वीडन की अकेले नहीं है। उन्हें फिलिस्तीनी लोगों द्वारा भी याद और सम्मानित किया जाता है जिन्होंने उन्हें उन कुछ अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों में से एक देखा जो उनकी मातृभूमि में घट रही त्रासदी का सामना करने को तैयार थे। जब नकबा 1948 में फिलिस्तीनियों का सामूहिक विस्थापन सैकड़ों हजारों को उनके घरों से अलग कर रहा था, बर्नाडोट विश्व के राजनयिकों में लगभग अकेले खड़े थे जिन्होंने उनके वापसी के अधिकार पर जोर दिया और स्थायी निर्वासन के अन्याय की निंदा की। उनके प्रस्ताव न्याय और मानवतावादी सिद्धांत में निहित विस्थापितों को गरिमा और पुनर्स्थापना का एक दृष्टिकोण प्रदान करते थे जो अभी तक साकार नहीं हुआ है। उनकी करुणा और साहस की मान्यता में गाजा शहर के निवासियों ने उनके नाम पर एक सड़क का नाम रखा, काउंट बर्नाडोट स्ट्रीट, दक्षिणी क्वार्टर रिमाल में स्थित। साधारण नीला साइन अरबी और अंग्रेजी दोनों में अंकित दशकों तक खड़ा रहा एक शांत श्रद्धांजलि के रूप में स्वीडिश मध्यस्थ को जो उनकी भूमि में शांति लाने की कोशिश में मरे। यह न केवल कृतज्ञता का प्रतीक था बल्कि स्मृति भी। बर्नाडोट के नैतिक दृष्टिकोण और न्याय की अभी भी खोज में एक लोगों के निरंतर संघर्ष के बीच एक पुल। आज वह सड़क और उसके आसपास का गाजा शहर का अधिकांश हिस्सा खंडहर में है। 2023 से गाजा पर छोड़े गए विनाश के बाद से रिमाल जिला मलबे के ढेर में बदल गया है। काउंट बर्नाडोट स्ट्रीट का विनाश एक साइनपोस्ट के नुकसान से अधिक है। यह एक स्मृति का मिटना और उस पीड़ा का आईना है जिसे बर्नाडोट ने कभी रोकने की कोशिश की थी। इस चित्र में एक दुखद समरूपता है, एक व्यक्ति जो सताए गए लोगों को बचाने के लिए युद्ध रेखाओं को पार करता था, अब एक सड़क में याद किया जाता है जो युद्ध के मलबे के नीचे दब गई है। फिर भी खंडहर में भी उनका नाम जीवित है, जैसा कि स्वीडन में, संयुक्त राष्ट्र में और उन दिलों में जीवित है जो अभी भी उनकी मिशन में विश्वास करते हैं। काउंट फोल्के बर्नाडोट की विरासत उन सभी की है जो साहस, करुणा और इस विश्वास को सम्मान देते हैं कि शांति, चाहे कितनी भी नाजुक हो, पूरी मानवता को देख कर्तव्य है। संदर्भ: बर्नाडोट फोक, यरूशलेम की ओर, लंदन, हॉडर एंड स्टाउटन, 1951। संयुक्त राष्ट्र महासभा, संकल्प 181-2, फिलिस्तीन का भविष्य का शासन, 29 नवंबर 1947। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद S/773, फिलिस्तीन में संयुक्त राष्ट्र मध्यस्थ काउंट फोल्के बर्नाडोट द्वारा प्रगति रिपोर्ट 14 मई 1948 के संकल्प 186-2 के अनुसार प्रस्तुत, 16 सितंबर 1948। संयुक्त राष्ट्र महासभा, संकल्प 194-3, फिलिस्तीन, संयुक्त राष्ट्र मध्यस्थ की प्रगति रिपोर्ट 11 दिसंबर 1948। बंच रैल्फ, फिलिस्तीनी संघर्ष पर चयनित दस्तावेज 1947-1949। न्यूयॉर्क, संयुक्त राष्ट्र अभिलेखागार, 1950। सेगेफ टॉम, एक पूर्ण फिलिस्तीन, ब्रिटिश जनादेश के तहत यहूदी और अरब। न्यूयॉर्क, हेनरी होल, 2000। मॉरिस बेनी, 1948, पहली अरब इजरायली युद्ध का इतिहास। न्यू हेवन, येल यूनिवर्सिटी प्रेस, 2008। हॉर्न एडवर्ड, एक अच्छा काम किया गया, वाइट बसेज की कहानी। स्टॉकहोम, स्वीडिश रेड क्रॉस, 1949। परेट्स डॉन, अरब इजरायली विवाद। न्यूयॉर्क, फैक्स ऑन फाइल, 1996। स्वीडिश विदेश मंत्रालय, काउंट फोल्के बर्नाडोट की स्मृति, 1895-1948। स्टॉकहोम, राज्य मुद्रणालय, 1949। कलीडी वालिद, संपादक, आश्रय से विजय तक, सायोनिज्म और फिलिस्तीन समस्या पर पठन, 1948 तक। वॉशिंगटन डीसी, फिलिस्तीन अध्ययन संस्थान, 1971। पापे इलिन, फिलिस्तीन का जातीय सफाया, ऑक्सफोर्ड वन वर्ल्ड पब्लिकेशंस, 2006। संयुक्त राष्ट्र सूचना कार्यालय, काउंट फोल्के बर्नाडोट स्मृति में, न्यूयॉर्क, 1949।